ओम शांति, ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? हर रोज हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हर मुरली में बाबा अलग अलग उत्तर देते हैं, बाबा क्यों आए हैं। तो आज बाबा ने बताया है मैं क्यों आया हूं। इस समय सब अज्ञान अंधेरे में भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, तो मैं आया हूं ज्ञान का नेत्र देने। अंधेरे में अगर कोई है या नेत्रहीन है तो वो तो ठोकर ही खाएगा। तो अज्ञान निद्रा में भी सोए हुए हैं और अगर भटकते भी हैं, ठोकरे भी खाते हैं, दुखी भी होते हैं, फिर पुकारते भी हैं। इसलिए मैं आया हूं ये ज्ञान का नेत्र देने। तो ज्ञान के नेत्र से क्या होगा, भटकना तो बंद हो ही जाएगा, दुख भी खत्म हो ही जाएगा, साथ साथ हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को जान जाएंगे। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बन जाएंगे, तो अवश्य फिर हर कर्म उसी श्रेष्ठ स्थिति में रह करके करेंगे। आज बाबा ने शक्तियों को भी याद किया है। हाँ, चल रहा है ना, शक्तियों की कितनी पूजा चारों ओर हो रही है। और बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा ही यादगार है, तुम ही वो शिव शक्तियां हो। देवियों को तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं ना, तो वैसे भी कहते हैं कि कैसे शिव ने जब असुर बढ़ गए तो शक्ति को प्रकट किया, और शक्ति ने अपने तीसरे नेत्र से कैसे असुरों का नाश किया, वध किया, तीसरा नेत्र खोलकर। तो बाबा कहते हैं तुम ही वो शिव शक्तियां हो और तुम ही असुरों का विनाश करते हो, अर्थात जो विकारी प्रवृत्ति बन गई है, वृत्तियां बन गई है, उनको आप नाश करते हो। तो देखो, तो देवियां बाबा आज किसको कहा होगा शिव शक्तियों को, तो कौन है वो शिव शक्तियां, हम ही तो है। तो बाबा कहते तुम्हें शिव शक्ति हो करके सबको ज्ञान देना है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो उसको ये ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान तो सबका पिता है ना। तो दूसरे धर्म वालों को भी देना है ये बहुत। बाबा ने आज उन धर्मों को भी कैसे ज्ञान देना है, ये कौन दे सकता है, शिव शक्तियां ही दे सकती है। नहीं तो चलो, देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनको तो देते ही हैं, वो तो सहज आ जाएंगे ज्ञान में। लेकिन और धर्म वाले भी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन मान लो उसी धर्म के ही हैं, तो उनको भी तो ज्ञान देना है ना, क्योंकि मैं सबको लेने आया हूं। तो देखो आज की बोली कितनी प्रासंगिक है। आज पहली तारीख से IPIP रिट्रीट शुरू हो रही है, जिसमें मिडल ईस्ट और एशिया के कई लोग आने वाले हैं, जो और धर्मों में हैं वो भी आएंगे और बाबा का ज्ञान सुनेंगे। और उसके लिए देखो हमारी अरुणा बहन आ गई। अरुणा बहन सबको हाथ हिलाओ। हाँ देखो अरुणा बहन उठो, खड़ी हो जाओ, खड़ी, हाँ खड़ी हो जाओ ना, स्टैंड अप। अरुणा बहन है और बारेन वाली कहाँ है वो, हाँ आप भी उठो, बारेन की अनसुया बहन। और कौन आए हैं, ये बारेन से, ये वैसे कुवैत भी संभालती है और अभी ऑक्सफोर्ड में भी आप सेवाएं दे रहे हैं, इजिप्ट, कितने जो मिडिल ईस्ट के भी देश हैं, और फिर साथ अफ्रीका में भी जो है अपना इजिप्ट है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, और वहां भी बाबा का सेंटर बनाया, वहां भी कितनी सेवाएं कर रहे हैं, और वहां से कितने आ रहे हैं अरुणा बहन, कितने आ रहे हैं? 130। अच्छा, एशिया और फिर उससे, अच्छा मिडिल ईस्ट सारा, अधिकतर तो मिडिल ईस्ट ही है, तो 200 कितने, स्पीक लाउडली। तो 160 और धर्मों में वो आ रहे हैं पहली तारीख से, और पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होनी है कब से, 16 तारीख, 16th, व्हेन इज पीस ऑफ माइंड, 16th। तो वहां भी देखो हमारे हमारे तीन महारथी पहुंच गए हैं, तो देखो अभी अक्टूबर माना, अभी विदेशियों की सीजन, उसके लिए ज्ञान सरोवर तैयार हुआ है विदेशियों को का स्वागत करने लिए। तो देखो आज बाबा ने सभी धर्म वालों को याद किया है, क्योंकि बाबा तो सभी आत्माओं का पिता है ना, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, तो ब्रह्मा की ये पहली रचना है हम ब्राह्मण, तो जब ब्रह्मा की पहली रचना होगी वो तो भाई बहन ही होंगे, वो थोड़ी कोई और ये किसी और कोई संबंध होगा, वो भाई बहन ही होंगे, क्योंकि एक ही माता पिता के बच्चे हैं। तो इसीलिए बाबा तुम भाई बहन हो, ये बाबा कितना जोर देते हैं, ये सबको समझाओ ब्रह्मा की संतान हो। बाबा ये भी कहते हैं सबको कहो तुम ब्रह्मा की संतान हो, केवल हम नहीं है आप भी हो, तो ये बाबा कहते हैं सबको समझाओ। तो आज बाबा ने इसका विस्तार किया है, समझेंगे बाबा की मुरली से। आज 29/9/2025 है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, है ना, सबके सबका तीसरा नेत्र खुला हुआ है ना, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है, हिम्मत के साथ समझाना है और धर्म वालों को भी हिम्मत के साथ समझाना है, तो वो कौन समझा सकते हैं, शेरनी शक्तियां। तो आ गई है वो शेरनिया शक्तियां उनको समझाने वाली। तो शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है, उत्तर है दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। ये सब धर्म वाली आत्माओं के लिए एक ही मंत्र है, तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, क्योंकि उनका पाठ तो मुक्ति धाम में है, इसलिए तुम आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी समझाए तो वो विरोध करना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, पर इतना युक्ति से समझाना है जो वो बिल्कुल उसको स्वीकार करे। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। तो तीसरे नेत्र की बात है तो गीत कौन सा होगा, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु दर दर ठोकर खाऊं। ओम शांति, बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है, क्योंकि ये अलग ही है ना, याद आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना तो बच्चों को कठिनाई होती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ठोकरें खाते हैं जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, तो अकेला ब्रह्मा तो नहीं होगा, उनके बच्चे भी होंगे। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वो फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। हम सब कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहते हैं। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। पूज्य से पुजारी, फिर पुजारी से पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं, वो तो सदा ही पूज्य है। हम आत्माएं पूज्य बनती है, फिर पुजारी बनती है, फिर पूज्य बनती है। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बने हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। कई ऐसी बातें हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म से संबंधित है, वो और धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कन्वर्ट हो गए होंगे, वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए, नहीं तो हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। लेकिन कितने कन्वर्ट हो गए और धर्मों में, फिर बाबा कहते वो आ जाएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। तो बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है, उनको तो सहज है, समझना भी सहज है, पर अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। हाँ सुना, अंधुना बहन माथा खपाते हैं, माथा खपाते अन्य धर्म वाले। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा, वो स्वीकार करेगा, समझेगा, उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं कैसे उनको सचमुच टच होता है और वो रेगुलर स्टूडेंट्स बन जाते हैं। बारेन वाली बहन बता रही थी, तो वहां तो बारेन में आधे तो वो अरब देश वाले आते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स। बहुत स्टूडेंट्स है, वह इंडियन भी है, परंतु वो दूसरे धर्म वाले भी अरब आते हैं। हमारा अबू धाबी का सेंटर है, वहां तो नीचे अपना सेंटर है और ऊपर वो मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वो भी बाबा का ज्ञान सुनने आते हैं। एक बहन का हम देखा कि वो जब निकलती है तो कैसे काले कपड़े पहन के आती है, काले वो फुरका पहनते हैं ना, और सेंटर पर आकर के वो काला बदल के सफेद पहन लेती है। सफेद पहन करके बाबा की मुरली सुनती है और कैसे दूसरों को भी समझाती है। तो बहुत अनुभव इनका, कभी अनुभव रखना। हाँ, हमारी अरुणा बहन का और ये उसका बारेन वाली का। तो बाबा कहते हैं अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, पहले तो बहुत विरोध करते थे आर्य समाजी, तो बाबा कहते उसमें से भी बहुत आए हैं बाबा के पास। सिख लोग भी आए हुए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार, ताल तालियां निकलती रहेगी। वो पवित्र होने कारण वो जब नई ताल निकलती है, धर्म पिता आते हैं तो नई ताल निकलती है, तो वो पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े क्योंकि फाउंडेशन लग रहा है ना देवी देवता धर्म का, तो इसलिए बहन भाई बनेंगे क्योंकि एक ही पिता के बच्चे बनेंगे, तो बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है तो पहले पहले कौन चाहिए? नई सृष्टि की स्थापना में सबसे पहले ब्रह्मा चाहिए, फिर ब्रह्मा के साथ फिर ब्राह्मण चाहिए, तो वही नई सृष्टि की स्थापना करेंगे। तो ब्राह्मण चाहिए मना भाई बहन चाहिए, तभी तो नई सृष्टि की स्थापना होगी। तो पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, ऐसा कोई यज्ञ नहीं होगा जिसमें ब्राह्मण न हो, ब्राह्मण जरूर चाहिए यज्ञ को चलाने लिए। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। अब वो है आदि पिता, तो आदि पिता माना ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या हो गए? ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, एकदम विराट रूप में पहले पहले ब्राह्मण है चोटी वाले। आदम बीबी, एडम ईव को तो मानते ही है, हर धर्म वाले मानते हैं, क्रिश्चियंस आदम बीबी एडम ईव कहते हैं, इस्लाम धर्म वाले आदम बीबी कहते हैं, तो मानते हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है, सबसे अच्छा यादगार मंदिर। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई है, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, सारी दुनिया में जो भी है बाबा कहते खलास तो हो ही जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। ये जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो, वो है जड़ मंदिर और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाते हैं। हाँ, कितनी सुंदर कारीगरी है छत में भी, एक एक भाग में। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो, बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है, इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर के पड़े हैं, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए, जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, और धर्म वालों से ऐसे बात करने में नहीं चाहिए अगर ज्ञान समझाने का अभ्यास नहीं है तो, इसलिए उनको समझाना भी नहीं चाहिए, बड़ी टैक्ट से समझाना होता और धर्म वालों को। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसे भी तो अभी जो आज पहली तारीख से रिट्रीट होनी है IPIP की, वो 4 तारीख को यहाँ आने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ का अनुभव करेंगे। तो नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये तो सब धर्म वालों को समझा सकते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही ये सर्विस कर सकती है, सब धर्म वालों को समझाने की जो सेवा है, बाबा कहते शेरनी शक्तियां ही कर सकती है। सन्यासी लोग भी बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अनेक संस्थाएं हैं ना, जहां मठ पंथ है तो वहां भी फॉरेनर्स बहुत आते हैं, तो उनको कहते हैं हम आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे। अब वो बाप को तो जानते ही नहीं है, परमात्मा कौन है बाबा कहते उसको तो जानते ही नहीं है, ब्रह्म को ही भगवान समझ कह देते हैं। इसको याद करो, हाँ ब्रह्म को याद करो, बस ये मंत्र दे देते हैं। जैसे ब्रह्म को याद करो बाबा कहते हैं, ये मंत्र देते हैं और उनको फंसा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, उनको फंसा देते हैं ना, ब्रह्म को याद करो ब्रह्म का ही वह ज्ञान देते हैं, तो जैसे चिड़िया को अपने पिंजरे में फंसा देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा था हरेक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वाच, नहीं तो बहस करेंगे आपको किसने कहा, तो कहो शिव भगवान वाच, ये भगवान ने कहा है। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं, सब निधन के हैं, दर दर भटक रहे हैं, पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा उसका भी अर्थ क्या है, तू मेरे मात पिता हो हम तुम्हारे बच्चे हैं, इसका अर्थ क्या है, ऐसे ही बोलते रहते। और फिर कहेंगे तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इस परमात्मा की कृपा होती है तो सुख घनेरे मिलते हैं, पर कौन से सुख है, अभी तो दुख ही दुख है, तो अभी इसका मतलब कृपा नहीं हुई है। तो जब कृपा होती है तो स्वर्ग आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो करेगा वो पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है बस, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वो तो पहले सतो प्रधान होंगे ना, जब लाखों की अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है, तब राजाई चलती है, फिर दूसरी राजाई उन पर आक्रमण करती है, तो लश्कर तैयार होते ना, सेना तैयार होती है। जब लाखों के अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने लिए। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम, और धर्म वालों को सुख भी कम मिलता है, स्वर्ग का सुख तो मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए जब आते थोड़ा सुख मिलता है तो दुख भी उनको कम है, सुख भी कम दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको भी मिल न सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो, कहाँ जाने लिए तैयार हो रहे हो, सुख धाम में आने के लिए तैयार हो रहे हो। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं, कोई भी पावन खंड और होता नहीं जब भारत स्वर्ग था। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहां लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। द्वापर के आदि में भी नहीं लड़ना झगड़ना होता है, तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, ने कहा ना भारतवासियों ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि शांति प्रिय देश है ना भारत, तो आक्रमण कभी नहीं किया। और माई बाप है, दाता है, तो इसीलिए सबको स्वीकार ही किया। भले लड़ करके सब बहुत कुछ लूट के ले गए भारत से, लेकिन बाबा कहते हैं हाँ सबका माई बाप है वो। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। ये तो कितना विशाल भारत था, महाभारत था, कितने सब और अलग हो गए भारत से, थोड़े थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए, ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है। आकर के समझो, भारत सदगति में था और अभी दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, भगवान ही आकर के रूहानी नॉलेज देते हैं। ये होती है परम पिता परमात्मा में, रूहानी ज्ञान केवल परम पिता परमात्मा में है। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य मनुष्यों को ही देते हैं। परमात्मा आत्माओं को ही नॉलेज देते हैं, बाकी जो और भी नॉलेज देते हैं वो मनुष्य मनुष्यों को देते हैं। शास्त्र भी तो मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने ही पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं, और कौन पढ़ती है, रूह पढ़ती है। बाप यहाँ तुमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है तो वो भी आत्मा, लेकिन वो अपने आप को आत्मा तो समझते नहीं है ना, इसलिए वो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, भगवान को क्यों शास्त्र आदि पढ़ने होंगे, उनको तो दरकार ही नहीं है। तो बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती। जब तक सदगति दाता स्वयं न आए तब तक किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां कितने होंगे, वहां 9 लाख होते हैं, बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहां गई, केवल 9 लाख होंगे सतयुग में, और अभी करोड़ों करोड़ों रोज गिनती बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 800 करोड़ कहते हैं दुनिया की आबादी, तो वो कहां चले गए फिर, वहां तो केवल 9 लाख ही है। तो बाबा कहते हैं फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहां गई, ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। वो तो समझ रहे आत्मा बुदबुदा है, वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, वो सब मुक्ति धाम में रहती है, वो लीन नहीं हो गई, वहां जाकर के मुक्ति धाम में निवास करती है, वो सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ मूंढा हुआ है जो कभी भी मिट नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, कभी भी मिट नहीं सकता, अविनाशी पाठ है, तो किसमें समाने की या लीन होने की तो बात ही नहीं है। आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, यानी निर्वाण को पा लिया फिर वापस न आए, मोक्ष हो गया, बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको पाठ बजाना ही है, जाएंगे सब उस ग्राम में, फिर उनको आना है पाठ बजाने, सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती है, सब आत्माएं आ जाती है, तब मैं आकर सबको ले जाता हूं। इसलिए बीच में तो भगवान आएगा नहीं, जब तक आत्माएं आती आ रही है तो भगवान नहीं आएगा। जब सब आ जाती है तब भगवान को आना होता है सबको वापस ले जाने लिए, तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में ही बाप का पाठ है, बाप का पाठ बीच में है ही नहीं, बाबा कहते हैं मेरा पाठ पिछाड़ी में ही है, पिछाड़ी में है ही बाप का पाठ, फिर और धर्म वाले अभी नहीं आएंगे, अभी तो बाप का पाठ है। नई दुनिया की स्थापना फिर पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा, बहुत है आर्य समाज में थे पहले, वो यज्ञ ही करते हैं, वो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, मानते नहीं उस रूप से, तो परंतु बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर ये बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, भगवान तो बाप है ना, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है, नई सैपलिंग लग रही है, तुम समझाते रहो फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वो आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्तियां बताते हैं। भगवान वाच माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्म विनाश होंगे और तो मुक्ति धाम में आ जाएंगे बाबा के पास। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है कि ये भगवान संदेश दे रहे हैं और हम पैगंबर उनके साथ है और ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम उस पति पावन को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तो मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हाँ, मैं अभी भारत में भी कितने झगड़े क्यों होते हैं, मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, बाबा कहते ये भी सब छोड़ो, मैं फलाने धर्म का हूँ वो धर्म का हूँ वो तो छोड़ो, लेकिन भाषा भेद भी कितना है, मैं गुजराती हूँ मैं फलाना हूँ, बाबा कहते ये भी सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है इसको क्या कहेंगे, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, ये है योग अग्नि, ये योग अग्नि है। संभाल कर कदम उठाना है, और धर्म वालों को समझाते हो तो संभाल कर। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन हमें बिगड़ तो आ न सके, भगवान के पास भी कैसे जा सकेंगे, पावन होकर ही जाएंगे, ऐसे तो जा नहीं सकते। तो निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगड़ तो आ नहीं सके, रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। अधूरा समझा हुआ ज्ञान तो बाबा कहते ऊंच पद कभी नहीं पा सकेंगे, पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो उसके साथ क्या संबंध है, भक्ति के साथ फिर ज्ञान का संबंध है। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान लेंगे, और थोड़ा ज्ञान लेंगे तो थोड़ा पद पाएंगे। तो अगर बहुत भक्ति की होगी तो पूरा ज्ञान लेंगे तो बड़ा पद पाएंगे। तो थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको तो कोई और काम धंधा तो नहीं है, पर रिटायर हो गए, अब बाबा की सेवा में लग जाओ, बाबा की ज्ञान की गहराई में जाओ। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है, रिटायरमेंट एज वैसे भी 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तप करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। लेकिन क्यों अभी छोटेपन में गुरु करा देते हैं? क्योंकि समझते पता नहीं कब शरीर छोटे छूटे इनका, पहले तो 100 साल जीते थे, तो इसीलिए 4 वो आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल, फिर 50 साल तक ग्रस्त आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो अभी तो कभी भी शरीर छोड़ सकते, तो इसीलिए बच्चों को ही गुरु करा देते हैं। आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है, ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं, वो तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। अभी अथॉरिटी बोल सकता है ये सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, ये सब है, क्या है ये सब वेद शास्त्र आदि, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी तो उतरनी होती है, ज्ञान भक्ति फिर भक्ति का भी वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? वैराग्य होता है दुनिया से, लेकिन दुनिया को छोड़ के तो कहीं और जगह और कोई ग्रह में थोड़ी जाएंगे। तो बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। बेहद की दुनिया का संन्यास करना है माने भूल जाना है, कहीं दूसरे ग्रह में नहीं जाएंगे तो भूल जाना है, तो बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। क्यों बाबा कहते हैं बेहद की दुनिया का संन्यास करना है? क्योंकि सच्ची में तो फिर हद की दुनिया हो जाएगी, छोटी दुनिया हो जाएगी, वहां जाना है। तो बेहद की दुनिया का संन्यास करना है, पवित्र बनने बिगड़ तो घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए फिर याद की यात्रा चाहिए, क्योंकि तभी पवित्र बन सकेंगे, याद की यात्रा बिना तो पवित्र नहीं बन सकेंगे। तो पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध घी की नदियां बहेंगी। बाबा जब ये कहते हैं तो हम कई बार दूसरों को ये समझाते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था, फिर सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु बनेगा, ये सब एक होगा, दूध घी की नदियां बहेगी। तो ये सब बताते हैं भविष्य का, भारत का जो भाग्य है। तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, ताली ही बजाते हैं। परंतु फिर उनको कहते परंतु, तो जब परंतु कहते तो आंखें उनकी खुल जाती है, क्यों परंतु? तो बाबा, तो फिर बाबा कहते परंतु क्यों? क्योंकि दूध घी की नदियां बहने से पहले रक्त की नदियां भी बहेगी भारत में, ये भगवान वाच है। तो फिर थोड़े उदास हो जाते हैं कि रक्त की नदियां भी बहेगी, परंतु ये भी तो ड्रामा में नूंद है कि ऐसे ही नहीं दूध की नदियां बहेगी, पहले रक्त की नदियां बहेगी और ये सारी धरती उस रक्त से उपजाऊ बन जाएगी, तो फिर खेती बहुत अच्छी होगी सतयुग में। तो इसीलिए रक्त की नदियां भी बहुत बहनी है। तो बाबा कहते हैं, भारत में रक्त की नदियां होने के बाद ही फिर दूध की नदियां बहेगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आवाज निकलता जाएगा, तुम्हारा आवाज निकलेगा, ब्रह्मा कुमारियों को मानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी देख रहे ना, इतने मीडिया विंग वाले आए नीचे, कितने 1500 मीडिया विंग वाले भाई बहने आए, और कैसे इतना अच्छा समझ कर गए, जो फिर जाकर के अपने अखबारों में डालेंगे। तो देखो ये भी कितनी सेवा हो गई। तो बाबा कहते हैं, समझाया जाता है कि इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी, लड़ाई लगी की लगी, व्यक्त बाप दादा कहते हैं ना, लड़ाई लगने में टाइम नहीं लगना है, पर क्यों लड़ाई रुकी हुई है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है। तो बच्चे तैयार नहीं है तो पर्दा कैसे खुलेगा, लड़ाई कैसे लगेगी? तो बाबा कहते हैं, अब लड़ाई लगी की लगी, एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ, फिर उसके बाद एक चिंगारी लगी और कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। तो यहाँ भी अगर एक किसी ने बम गिराया तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर आने में देर नहीं है। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था, समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, ये भी समझ रहे हैं कि लड़ेंगे जरूर। लड़ाई चलती ही रहती है, वैसे छोटी छोटी लड़ाइयां तो चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए, तो फिर बाबा कहते पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। नई दुनिया कैसे आएगी जब तक पुरानी दुनिया खत्म नहीं होती है? तो तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा, निर्वाण धाम में जाने के लिए क्या करना होगा, पूरा पावन बनना है, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है, रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान, हाँ बाबा की आज ये वरदान भी बहुत सुंदर है। बाबा का सेवा, सच्चा सेवाधारी किसको कहेंगे। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा, अब किसको कहेंगे, यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा भाव अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। सेवा वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ तपस्या भी साथ होगी। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है वो है कौन सी सेवा। अगर उस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है तो वो नामधारी सेवा है, केवल नाम के लिए सेवा, वो नामधारी सेवा है। इसीलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। कोई इच्छा हो, कोई प्राप्ति की इच्छा हो तब सेवा करना, ये बाबा कहते हैं ये वास्तव में सच्ची सेवा नहीं है। तो त्याग तपस्या सेवा ये तीनों साथ साथ कंबाइंड हो तब कहेंगे यथार्थ सेवाधारी बनना। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। क्रोध क्यों आता है, क्योंकि नम्रता नहीं है, धैर्यता भी नहीं है। तो इसलिए नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। कैसे तमोगुण भस्म होगा आत्माओं में से, निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, किसी ने शरीर छोड़ा है, बीके के क्या है, शनमुख राव भाई जो बीके रम्या बहन अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में, रम्या बहन जो ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनके पिताजी आज सुबह अमृत वेले 2:45 को जीजीआरसी अहमदाबाद में अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। 1997 से ज्ञान में थे, ऐसी विशेष आत्मा को योग में स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रम्या बहन है अपनी, डॉक्टर है ग्लोबल हॉस्पिटल में, उनके पिताजी ने जीजीआरसी में अहमदाबाद में शरीर छोड़ा है। अब हम 3 मिनट उस आत्मा को योगदान देंगे।